सभी गौर भक्तगंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सबको सुनाई दे रहा है लास्ट में सुनाई दे रहा है उधर हरे कृष्ण आज और कल हम कृष्ण भगवान की जयंती जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। हम आप सबको इस उत्सव में स्वागत करते हैं। हर साल ये कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में लगभग 40,000 लोग आते हैं पुणे में भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इस तरह के भगवान के हर जन्मदिन जब हम मनाते हैं हमें ज़रूर भगवान के संबंध में ऐसे कुछ चीज़ हमें सीखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हम भगवान की ओर एक कदम और हम बढ़ा सकते हैं। हमारा संघ का नाम है कृष्ण भावनामृत संघ। इसका मतलब क्या है? भक्त को ऐसे कृष्ण भावना में रहना चाहिए, इसलिए ये शब्द भावना नाम प्रभुपाद जी ने दिया था। तो प्रभुपाद जी जब ये संस्था शुरू किया था उस समय उन्होंने सब शास्त्रों को ढूंढा, ये संस्था का क्या नाम हम देना चाहिए इसका। जैसे आजकल अनेक मिशन हैं, अलग अलग मिशन हैं, और इन मिशनों में जो संस्थापक आचार्य हैं उनका ही नाम से मिशन होता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। अनेक मिशन हैं जो जिन्होंने उसको शुरू किया है उनके नाम में होता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम नहीं दिया प्रभुपाद मिशन, ऐसा नहीं दिया उन्होंने। तब तो उन्होंने शास्त्र को ढूंढा, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं, ये नाम एक शास्त्र को उन्होंने दिया था कृष्ण भावनामृत। जब प्रभुपाद जी ने इसको देखा उनको बहुत अच्छा लगा कि ये नाम जो है कृष्ण भावनामृत संघ, ये हमें देना चाहिए। ये कृष्ण भावना का अनेक परिभाषा प्रभुपाद जी देते हैं। एक परिभाषा है, एक व्यक्ति को ऐसे जीवन जीना चाहिए मानो वो भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसके साथ में है। जैसे प्रभुपाद जी बताया करते थे कि हर एक व्यक्ति को ऐसे क्रिया अपने कर्मों को ऐसे करना चाहिए, मन में हमेशा भगवान को रखते हुए काम करना चाहिए। टू परफॉर्म अवर ऑल अवर एवरीडे एक्टिविटीज वाइल लॉन्गिंग टू मीट कृष्णा, हमारे सब क्रियाओं को करना चाहिए लेकिन भगवान कृष्ण को मिलने की एक तरह की आतुरता होनी चाहिए अपने हृदय में, तो इसको कृष्ण भावनामृत बोलते हैं। दूसरा परिभाषा देते हैं प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत, इसका मतलब है हमारे हर घटना जो होता है अपने जीवन में उसमें भगवान कृष्ण के हाथ को देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जैसे भगवान बताते हैं सातवें और दशम अध्याय में भगवद गीता में, कैसे जब तुम पानी पीते हो उस पानी का स्वाद में हो, चंद्रमा और सूर्य की जो रोशनी है वो भी में हो। इस तरह भगवान अनेक उदाहरण देते हैं, जो बलवान है उनके शरीर का में बल हो, जो बुद्धिमान है उनका में बुद्धि हो, ऐसे भगवान अनेक चीज़ बताते हैं। इस तरह हर चीज़ में भगवान को देखना और समझना वो भी कृष्णा भावनामृत माना जाता है। लेकिन अभाग्यवश हमारे भारत में भगवान के बारे में जो जानकारी है लोगों के अंदर उसमें अनेक गलतफहमियां फैला हुआ है, इसलिए हम आज एक ही शीर्षक टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा बहुत हम चर्चा करना चाहेंगे, जो खास करके हमारे भारत में रहने वालों के लिए बहुत लायक विषय है। देखिए पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिक लोगों ने इतना आविष्कार की है जिसके कारण लोग पूरे ऐशरा में डूबे हुए हैं, माया में इतने डूबे हुए हैं, उनको माया से बाहर लाने के लिए एक तरह का प्रचार करना होता है। लेकिन भारत में दूसरी तरह की समस्या है। भारत में समस्या क्या है, इतने धर्म हैं भारत में, इतने धर्म के नाम में इतना चलता है भारत में, अनेक लोग गलत चीज़ों को सीख लेते हैं और उसके बाद जब सही चीज़ दिया जाता है तभी लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए मैं खुद अपने जीवन में, हमारी पहले समझावट थी कि परम सत्य जो है वो निराकार है, ऐसा हमने सोचा था पहले। और जो भी हम अलग अलग भगवान की जो रूप देखते हैं वो सब एक ही निराकार ब्रह्म का अलग अलग स्वरूप है, ऐसे हम सोचते थे पहले। आप में भी शायद अनेक लोगों ने ऐसे सुना होगा प्रवचनों में। लेकिन आप अगर भगवद गीता पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो निराकार ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्योति जो है, वो भगवान बताते हैं। कृष्ण भगवद गीता के 14वां अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ये ब्रह्म ज्योति का प्रतिष्ठा में ही हूँ, भगवान बताते हैं। जैसे ये जो रोशनी आ रहा है अभी, ये निराकार है, लेकिन ये किधर से आ रहा है, एक बल्ब से आ रहा है, वो साकार है। आप देखेंगे हर एक निराकार चीज़ के पीछे एक साकार सत्य ज़रूर होता है। उदाहरण के लिए हमारे भारत सरकार है वो निराकार है, लेकिन वो सरकार के पीछे कौन है, प्रधानमंत्री हैं जिनका स्वरूप है, हम देख सकते हैं। जैसे सिनेमा घर में हम रोशनी को देखते हैं जो स्क्रीन के ऊपर आकर गिरता है, लेकिन उस रोशनी के पीछे आप देखेंगे वो स्क्रीन किधर से वो आता है तस्वीर, आप देखेंगे कि उधर एक मशीन है, वो मशीन के पीछे एक आदमी बैठा हुआ है जो ऑपरेट कर रहा है उसको। तो हर एक निराकार चीज़ के पीछे आप एक साकार सत्य को आप ज़रूर देखेंगे ही। तो अंग्रेज में इसको बोलते हैं एनर्जी एंड एनर्जेटिक, शक्ति और शक्तिमान। तो अनेक लोग मानते हैं कि परम सत्य एक शक्ति है, ये तो आजकल नास्तिक लोग भी मानना शुरू हो गया है आजकल। वो लोग मानते हैं कि ज़रूर कुछ शक्ति है जिसके कारण सब चल रहा है इस दुनिया में, लेकिन शक्ति को मानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन शक्तिमान जो है शक्ति के पीछे उसको मानना आवश्यक है, जो पुरुष जो होते हैं। जैसे अगर आप घर में बैठे हुए हैं, अचानक आप देखते हैं आपके टेलीविज़न में कोई पत्थर आकर गिरता है और टेलीविज़न टूट जाता है, तो आप तुरंत आप क्या प्रश्न पूछेंगे, तुरंत आप खिड़की के बाहर देखेंगे कौन फेंका यह पत्थर, है ना? क्योंकि अगर पत्थर के अंदर शक्ति है तो उसको फेंकने वाला एक शक्तिमान व्यक्ति होना चाहिए, है ना? इस तरह शक्ति के पीछे शक्तिमान है, अब शक्तिमान शक्ति से भी श्रेष्ठ है। आजकल इतने लोग तरह तरह देवियों की उपासना करते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि आदि पराशक्ति नहीं तो देवी ही सब चीज़ों का स्रोत है। उन लोगों को मालूम नहीं कि भगवान अपने शक्ति के मदद के बिना भी सृष्टि कर सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु कैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं, अपने नाभि से एक कमल को पैदा करते हैं, उस कमल में ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, अपने ही नाभि से वो ब्रह्मा को जन्म दे सकते हैं। ऐसे इस तरह हम समझ सकते हैं कि शक्तिमान जो है वही शक्ति का भी स्रोत है। तो हम शास्त्र के तौर पर हमें देखना चाहिए कि परम सत्य क्या है। अनेक लोगों का सोचना होता है, एक व्यक्ति ने पूछा मुझे, प्रभु जी आप लोग सिर्फ क्यों कृष्ण को मानते हो, कृष्ण तो जूनियर हैं, राम उनसे सीनियर हैं, राम जी पहले आए थे कृष्ण बाद में आए, लेकिन आप लोग कृष्ण को मानते हो, राम को क्यों नहीं है? तो लोगों का सोचने का, विचार करने का तरीका ऐसे होता है, वो लोग सोचते हैं कि एक अवतार आया और भगवान ने ऐसे लीला की और बस खत्म हो गया। लेकिन इनको मालूम नहीं शास्त्र के अनुसार परम सत्य ऐसा है कि वैकुंठ जो है उधर भगवान का नित्य निरंतर शाश्वत स्वरूप होता है भगवान का। जैसे आप इधर देखते हैं राधा कुंज बिहारी, इसी स्वरूप में भगवान भगवद्धाम में रहते हैं और भगवान लीलाएँ करते हैं, अनगिनत लीलाएँ करते हैं, और उन लीलाओं का एक छोटा सा, जैसे सिनेमा में कभी कभी ट्रेलर दिखाया जाता है, आपने देखा है ट्रेलर? ट्रेलर देखा है? ट्रेलर थोड़ा बहुत दिखाते हैं सिनेमा के, इस तरह भगवान भी अपनी लीलाओं का एक ट्रेलर दिखाने के लिए इस भौतिक दुनिया में आते हैं। इधर भी आकर थोड़ा लीलाएं करते हैं ताकि हम उन लीलाओं को देखकर हम आकर्षित हो जाए और भगवद्धाम वापस लौट कर हम भगवान की नित्य निरंतर हम सेवा करें। तो ये वैकुंठ जो है, ये तो भगवान की धाम जो है, ये शाश्वत चीज़ है। इसके बारे में भगवान खुद बताते हैं भगवद्गीता में। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, मेरे धाम जो है वो सूर्य से चंद्र से प्रकाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशक है। इस तरह भगवान बताते हैं। और जो लोग मेरे धाम में वापस आते हैं वो इस दुनिया में वापस उनका पतन नहीं होता है। भगवान ऐसे भगवद्गीता में बताते हैं। ये एक श्लोक है, ऐसे आप लगभग 12 श्लोक देखेंगे भगवद्गीता में जिधर भगवान अपने ही धाम के बारे में बता रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था भगवद्गीता 2 दिन के पहले, प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा प्रश्न पूछा। आप पढ़िए 7वां अध्याय 24वां श्लोक 7.24, उसको आप पढ़ेंगे। उसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी पूछते हैं, भगवद्गीता के अंदर भगवान अलग अलग देवी देवता के बारे में बताते हैं और उधर बताते हैं भगवान जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनको अल्प बुद्धि है। ऐसे एक श्लोक है भगवद्गीता में, ऐसा बताते हैं भगवद्गीता में, भगवान खुद बताते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, ऐसे बताते हैं। कारण क्या है बताते हैं, क्योंकि ये भौतिक दुनिया जो है ये क्षणभंगुर है और जो अलग अलग देवी देवता के पास पूजा करके अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं उन लोगों को मालूम नहीं कि ये जो भी इकट्ठा करते हैं वो अशाश्वत है और देवताओं के लोग भी अशाश्वत हैं और देवता भी खुद अशाश्वत हैं सब, क्योंकि ये 14 भुवन हैं इस भौतिक दुनिया में। उसके बारे में भगवद्गीता में वर्णन है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना, भगवान बताते हैं। तो जो भी अलग अलग देवताओं के ग्रहों में जाते हैं वो उधर हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं, वापस आ जाते हैं इसी मर्त्यलोक में। उतना ही नहीं, लेकिन वो देवता भी शाश्वत नहीं है, उनका भी हमारा जैसा शरीर है। अभी ब्रह्मा जी हैं, इंद्र है, चंद्र, ये सब ऐसे ही जीवात्मा हैं, लेकिन उनको एक पदवी दिया गया है, बस इतना ही फर्क है साधारण जीव में और उनमें। लेकिन भगवान बताते हैं जो मेरे पूजा करता है वो मेरे पास मेरे धाम में आते हैं। आप सब लोग एक श्लोक दोहराइए, भगवान ये भगवद्गीता में बताते हैं। तो ये श्लोक से आप समझ सकते हैं कि जो पथ आप अपने जीवन में अपनाते हो उसके अनुसार आपको लाभ मिलने वाला है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि तुम कुछ भी जीवन में करो अंत में सब लोग भगवान के ही पास जाएंगे, ऐसे लोग सोचते हैं। ये किसके समान है, कलकत्ता का टिकट लो और आप दिल्ली जा सकते हो, क्या जा सकते हैं? अगर दिल्ली का टिकट लेते हैं तो मद्रास नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह भगवान भी बताते हैं भगवद्गीता में एक श्लोक में कि कैसे अलग अलग देवों की और मेरे जो पूजा करते हैं वो लोग अलग अलग धाम को वो प्राप्त करेंगे। उसमें बताते हैं, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, भगवान बताते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो उन देवताओं के पास जाते हैं और जो मेरे पूजा करता है वो मेरे धाम में आते हैं। फिर भी जो देवताओं के पास जाते हैं पूजा करके उनको शाश्वत पदवी नहीं मिलने वाला है, ऐसे भगवान बताते हैं। क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड के ही अंदर हैं सब देवता, लेकिन भगवान का वैकुंठ लोक जो है ब्रह्मांड के बाहर है, वो भगवत धाम में है। तो प्रभु जी पूछते हैं उस तात्पर्य में, ये सब जो भगवान ने बोला है ये सत्य है असत्य है? ऐसे अनेक लोग बोलते हैं कि सब देवता एक समान है, आप किसी का भी पूजा कर सकते हैं, आप सब अंत में सब लोग ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, इस तरह लोग बोलते हैं। किधर बताया गया है भगवद्गीता में, बोलिए? कहीं भी नहीं बताया गया भगवद्गीता में कि तुम किसी का भी पूजा करो अंत में तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे, बस खत्म हो जाओगे तुम, कहीं भी नहीं बताया गया भगवद्गीता में। भगवद्गीता में साफ साफ बताया गया है कि परम सत्य भगवान है, मतः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान बताते हैं हे अर्जुन मेरे से बढ़कर परम सत्य नहीं है, तो हम एक दो लीलाओं के बारे में बताना चाहेंगे जिससे हम समझ सकते हैं कि ये परम सत्य जो है वो निराकार नहीं है लेकिन एक सुंदर स्वरूप वाले परम भगवान श्री कृष्ण हैं। इसको हम कल्पना नहीं किया है लेकिन शास्त्र में जो बताया गया है उसके द्वारा हम जान सकते हैं। जब पांडव लोग काम्य वन में रहते थे उस समय अनेक ब्राह्मण और ऋषि मुनि उधर आते थे उनको मिलने के लिए। एक बार भगवान कृष्ण खुद आए थे पांडवों को मिलने के लिए, तो युधिष्ठिर ने भगवान को पूछा, हे भगवान आपको कैसे पता चला? भगवान और साथ में सत्यभामा आए थे, दोनों पांडवों को मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि हम लोग इधर हैं? तो भगवान ने कुछ नहीं बोला जवाबी में, सिर्फ उन्हें मुस्कान किया बस। आप समझ सकते हो कि भगवान की मुस्कान में अनगिनत उसके मतलब हैं, क्योंकि भगवान को किसी जानकारी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भगवान सब जानते हैं। तो वो सब लोग बात कर रहे थे, इतने में नारद मुनि आ गए उनके बीच में। तो नारद मुनि से भगवान कृष्ण ने खुद विनती किया कि आप कुछ कथाएं बताइए सबके लिए। तो नारद मुनि बोलने ही वाले थे, उसके अंदर मार्कंडेय ऋषि आ गए। हे मार्कंडेय ऋषि, इस भौतिक दुनिया में बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों साल उन्होंने जिया है और उनकी तपस्या बहुत श्रेष्ठतम तपस्या है, इसलिए नारद मुनि खुद उनसे विनती किया कि आप तरह तरह की लीलाओं के बारे में बताइए, हम सब लोग सुनेंगे ऐसे। तो मार्कंडेय ऋषि पांडवों को बताने लगे, अनेक लीलाएं बताया उन्होंने। ऐसे बताते बताते उन्होंने उन लोगों को बोला कि मैं अपने खुद के जीवन से एक आपको एक घटना बताऊंगा जो आपके लिए लायक सुनने के लिए बहुत आवश्यक है। उस समय उन्होंने बोला कि बहुत सालों के पहले ये उनका अनुभव था कि जब वो अपने ही आश्रम में पुष्पभद्रा नदी के किनारे में वो बैठे थे अपने आश्रम कुटीर के पास में, एक दिन उन्होंने देखा कि अचानक बहुत बड़ा एक बाढ़ आ गया उधर। तो ऐसा ही लगा कि ये बाढ़ है लेकिन धीरे धीरे वो बहुत बड़े समुद्र हो गया वो, और चारों ओर से समुद्र है उनकी ओर आने लगा, सामने से पीछे से साइड से आने लगा। ऐसे धीरे धीरे समुद्र पास में आकर पूरे एरिया को ऐसे निगल लिया। तो वो समुद्र में तैरने लगे, अभी समझ गए कि शायद प्रलय आ गया है अभी, क्योंकि समुद्र का पानी शायद ऐसे ऊंचे आसमान तक उठने लगा, इतने बड़े बड़े लहरें उठने लगे समुद्र में। और मार्कंडेय ऋषि तैरने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, बहुत थक गए, कभी कभी बड़े तिमिंगल आते थे उनको खाने के लिए लेकिन चले जाते थे उसके बाद। और इस तरह वो पानी में बड़े बड़े लहरें आकर उनको तमाच मारते थे ऐसे। तो इस तरह बहुत तकलीफ सहन करने के बाद सालों, ऐसा लगा कि बहुत साल बीत गए। उसके बाद अंत में उन्होंने दूर के प्रदेश में देखा एक द्वीप था, उस द्वीप में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के एक पत्ते में एक सुंदर बच्चा था, तो इनको दिखाई दिया। तो तैर के पास में जाने लगे। जब वो बच्चे के पास गए तो बच्चे को वो ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा कि वो बच्चा का बहुत सुंदर रंग था, वो नीलमणि के समान नीला रंग था उसका, और उसके ओंट लाल थे बिंब फल के समान, और उसके आंख कमल के पंखुड़ी के समान थे, और उसके बाल घुंघराले थे, और वो बहुत सुंदर वैजयंती माला पहने थे, और उनके छाती में श्रीवत्स का चिन्ह था और कौस्तुभ मणि भी था। तो जब उन्होंने श्रीवत्स का चिन्ह देखा तुरंत वो समझ गए कि ये साक्षात हरि, भगवान हरि है। फिर भी वो बच्चे के पास में गए तो बच्चे के पास जाते ही इनके सब तकलीफ गायब हो गए, इनको इतना आनंद प्राप्त हुआ हृदय में। तो इनको आश्चर्य हुआ कि वो बच्चा इनसे बात करने लगा। तो बच्चे ने बोला इनको, मार्कंडेय ऋषि को, हे बच्चे, ऐसे उनको बुलाया। उन्होंने बोला कि हे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम बहुत थक गए हो अभी तैर तैर कर, अगर तुमको थोड़ा आराम चाहिए तो मेरे शरीर के अंदर जाकर तुम आराम करो। इस तरह बोल बोलकर बच्चा ने ऐसे श्वास लिया, तुरंत वो अंदर चले गए। तो अंदर जाने के बाद देखा उन्होंने मैं किधर आ गया हूँ। वापस देखा भूमि था, बहुत बड़ा हिमालय था, अनेक समुद्र थे, गंगा भी था, गंगोत्री था, ऋषिमुनि तपस्या कर रहे थे, अनेक जन थे, शहर थे, नदी थे, सब थे। तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं वापस उसी प्रदेश में आ गया हूँ जिधर से मैंने इस बच्चे को ढूंढ कर आया था। अभी पता नहीं किधर गया बच्चा, ऐसा सोच रहे थे वो। इतने समय के बाद वापस बच्चे ने श्वास छोड़ा ऐसे, तो बाहर आ गए। उसके बाद तो बाहर आकर वापस देखा उन्होंने बच्चे को, हाँ वो ही सुंदर बच्चा था। तो उन्होंने समझ गया कि बच्चे के पेट के अंदर जो है उसका सीमा ही नहीं है। जैसे अभी आसमान को कोई छू नहीं सकता है, सीमा कोई जानता नहीं, ऐसे ही बच्चे का पेट था, कोई सीमा समझ नहीं पाए। और जब बाहर आकर देखा उन्होंने, ये बच्चा अपने पाँव के उंगली को, पैर के उंगली को लेकर वो चूस रहा था अपने मुँह में। ऐसे आचार्य ने बताया है कि ये भगवान, ये बच्चा कौन था वो अपने बारे में परिचय देता है बाद में कि ये भगवान हरि, भगवान कृष्ण है। तो वो क्यों चूस रहे हैं, क्योंकि भगवान को आश्चर्य होता है कि मेरे भक्त मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, ऐसे हमेशा मेरा गुणगान करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरा रूप को, स्वरूप को ध्यान करते हैं, मेरे मंदिर में मेरे सामने आकर नाचते हैं, हमेशा मेरे पाँव का आश्रय लेते हैं, मेरे पदक, मेरे पाँव के पदक कमलों के नीचे ऐसे क्या स्वाद है जिससे मेरे भक्तगणों को आनंद मिलता है, ये स्वाद को मैं खुद छककर देख लूँ। इस तरह सोचकर भगवान ने क्या किया, अपने ही पाँव के उंगली को लेकर अपने मुख में डालने लगे, एक सुंदर बच्चा। इसको देखकर मार्कंड ऋषि को और भी आनंद हुआ उसको देखकर। तो उन्होंने बच्चे को पूछा, हे बच्चा बताओ, मैं समझ गया कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि सारे ब्रह्मांड तुम्हारे पेट के अंदर है, अभी तुमने उसका दर्शन दिया मुझे, और ये बताओ कि मुझे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे इधर रहने का क्या लक्ष्य है, ये सब क्यों चल रहा है, ऐसे उन्होंने पूछा। तभी वो बच्चे ने बोला, वो गंभीर आवाज से वो जवाब देने लगा वो बच्चा। उसने बोला कि मैं ही सब चीज़ों का स्रोत हूँ और मैं ही सब चीज़ों का नाश का कारण हूँ, और सब चीज़ मेरे से ही आते हैं और मेरे अंदर ही रहते हैं, और लोग मुझे बुलाते हैं किस नाम से, भगवान हरि, नहीं तो विष्णु, नारायण, कृष्णा, इस तरह के नामों से लोग मुझे पुकारते हैं, और मैं ही भक्तों का गति हूँ, और भक्तों को रक्षा देना और राक्षसों को दंड देना ये सब मैं ही करता हूँ। इस तरह इस दुनिया में किसी भी चीज़ नहीं है जो मेरे में आशय नहीं लेते हैं, मेरे आशय के बिना कुछ भी चीज़ नहीं रह सकता है। इसलिए उन्होंने बोला, हे मार्कंडेय, अभी भी प्रलय के बाद अगले बार जब ब्रह्मांड शुरू होगा तब तक तुम मेरे ही शरीर में रहो। इस तरह बोलकर भगवान ने मार्कंडेय को अपने ही शरीर में रखा जब तक अगले बार सत्ययुग शुरू हुआ उस समय तक। और भगवान ने उनको दो वरदान दी थी। उन्होंने बोला मार्कंडेय ऋषि को कि आपको कभी भी मैंने जो सत्य बताया अभी ये कभी भी आप भूलोगे नहीं, हमेशा तुमको ये याद में रहेगा, और साथ साथ तुमको इच्छा मृत्यु होगा, उसका मतलब है तुम जब मरना चाहते हो तभी आप मर सकते हो। इस तरह दो वरदान दी थी भगवान ने उनको। तो इस घटना के बाद मार्कंडेय ऋषि के जीवन में बहुत असर पड़ा भगवान के संबंध में। अभी मार्कंडेय ऋषि ने कृष्ण की ओर मुड़कर देखा, उन्होंने देखकर पांडवों को बोला, हे पांडव, मैं भगवान ने मुझे ऐसे बुद्धि दी जिससे मैं किसी भी चीज़ को मैं भूलता नहीं आसानी से, एक बार समझ लिया किसी चीज़ उसको भूलूंगा नहीं कभी। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, उन्होंने बताया कि मैं जो बच्चे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो हरि, भगवान हरि, ये साक्षात कृष्ण है जो आपके बीच में आपके रिश्तेदार के समान बर्ताव कर रहे हैं। ये समझ लो कि ये कृष्ण ही ये सारे ब्रह्मांड का स्रोत है, यही सब चीज़ों का आश्रय है, यही पूर्ण पुरुषोत्तम है, और इनसे परे कुछ परम सत्य नहीं है, यही सब सत्यों का सत्य है, ये परतत्व है, ये परात्पर तत्व है, इसके परे कोई तत्व नहीं है, यही भगवान कृष्ण है। इनका आश्रय लो, इनके आश्रय लेने से तुम्हारे अंतिम गति जो है आनंद की गति वो अपने आप तुमको प्राप्त हो जाएगा, इस तरह उन्होंने बताया। जब पांडवों ने सुना तुरंत सब पांडव भगवान के पांव में गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, और भगवान बहुत मधुर शब्द बोलने लगे पांडवों को, और मार्कंडेय ऋषि की ओर मुड़कर देखा और भगवान ने मुस्कान किया दूसरी बार। अभी भगवान जब भी मुस्कान करते हैं कौन समझ सकते हैं मुस्कान के पीछे क्या है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि और भगवान एक दूसरे की ओर देखकर ऐसे मुस्कान कर रहे थे। ऐसे ही मुझे याद आ रहा है जब कुंती महारानी ने देखा कि भगवान कृष्ण उनके पास आकर दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके पांव को छूते हैं और धूल लेकर अपने सर के ऊपर रखते हैं, तो कुंती महारानी हंसती है और वो अनेक श्लोक बोलती है भागवतम में, आप सुनेंगे। नमस्ते पुरुषम तु आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। हे भगवान कृष्ण, तुम देखने में मेरे क्या बोलते हैं बांझा बोलते हैं बांझा, लोग सोचते हैं कि तुम मेरे बांझा हो, लेकिन आप कौन हो? ईश्वरम प्रकृते परम, तुम प्रकृति से परे परम सत्य हो तुम। लेकिन जो लोगों को आंख नहीं है देखने के लिए आपको, वो लोग देख नहीं सकते आपको। अलक्ष्यम सर्वभूताना, आप सबके हृदय में बैठे हो अंतर्यामी के रूप में और बाहर भी हर अणु अणु में बसे हुए हो, फिर भी लोग आपको देख नहीं पाते हैं। कारण क्या है? वो अंधे हैं, उनको दिव्य आंख नहीं है, प्रेमांजन नहीं है उनके आंखों में, इसके कारण आप देख नहीं पाते हैं आपको। लेकिन आप परम सत्य हो, ईश्वर हो, लेकिन आपके बर्ताव से लोग सोचते हैं कि आप साधारण व्यक्ति हो, एक साधारण मनुष्य हो, इस तरह लोग सोचते हैं। यह श्लोक हम बोलेंगे कुंती महारानी के, आप सब लोग दोहराइए। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। इसमें बताती है कुंती महारानी, हे भगवान आपके हम पंकज नाभ है, आपके नाभि जो है वो पंकज के समान है, पंकज का मतलब है कमल के समान है, और आप पंकज के माला पहने हैं, और आपके आंख जो है कमल के पंखुड़ियों के समान है, और आपके पांव जो है पैर जो है वो भी कमल के समान है। अभी कोई पूछ सकता है कि ये क्या कमल की, बार बार कमल के ही उदाहरण देती है कुंती, दूसरा कुछ क्यों नहीं मिलता उनको? लेकिन इस भौतिक दुनिया में सबसे नरम चीज क्या है? कमल है। कमल इतना सुगंध आता है कमल से, और कमल बहुत नरम होता है, बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए भगवान को एक नील कमल से तुलना किया गया है आचार्यों ने इस तरह। तो भगवान के शरीर के अंग इतने कोमल हैं कमल के पंखुड़ियों जैसे, और उनका शरीर किससे बनाया हुआ है? सच्चिदानंद विग्रह से बनाया हुआ है। ये हमारे शरीर जैसे भौतिक पांच धातुओं से नहीं बनाया गया है भगवान का शरीर, ये तो मृत शरीर है, बूढ़ा होने वाला शरीर है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आता है, व्याधि आता है, लेकिन भगवान का शरीर कैसे बनाया है? सच्चिदानंद से बनाया शरीर है। ऐसे बताया जाता है कि जब भगवान नाच रहे थे रासलीला में गोपियों के साथ, ऐसे नाचते रहे रात को घंटों घंटे नाच रहे थे ऐसे, तो भगवान कभी भी थकते नहीं थे, भगवान इतने तेजी से नाच रहे थे, ऐसे सब जगह में गोपियाँ ने भगवान को देखा, हर एक गोपी ने देखा कि दो गोपियों के बीच में एक भगवान है, उन्होंने देखा ऐसे। तो ऐसे नाचते में भगवान ने देखा कि कुछ गोपियाँ थक गई हैं नाचते, उसके बाद हालांकि वो भगवान की सेवा ही कर रही थी, नाचने से भगवान की सेवा कर रही थी, फिर भी वो थक गई, उनके ऐसे चेहरे में पसीने छूटने लगे, तो ऐसे भगवान ने अपने हाथों से उस पसीनों को ऐसे निकाला, तभी गोपियों ने ऐसे भक्तिभाव में गोपियाँ डूबी गई थी, जब भगवान ने ऐसे किया उनको लगा कि कोई एक कमल को लेकर उनके चेहरे के ऊपर ऐसे कर रहा हो, ऐसे लगा उनको, ऐसे भगवान के हाथ कमल के समान है। तो इस तरह भगवान का दिव्य शरीर है, ये उपनिषदों में भी बताया गया है, ऐसे बताया गया उपनिषदों में सपर्यगात् शुक्रमकायम् अव्रणम् अस्नाविरम् शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूस्वयंभूर् याथा तत्यतोत्थान ददाचाश्रुतिभ्यः समाभ्यः। इधर बताया गया है कि भगवान के अस्नाविरम का मतलब है भगवान के शरीर में कुछ नसें ही नहीं है, भगवान के शरीर में पूरा शरीर दिव्यमय है। जैसे अगर आप एक शक्कर पिट्टी जो है उसको लेकर एक एक पुतली बनाएंगे, आप कहीं भी छुओ उसको, उसमें क्या रहता है, पिट्टी शक्कर ही रहता है बस। उसको कहीं भी काटो आप क्या देखोगे, पूरा शक्कर ही शक्कर है। इस तरह भगवान का शरीर पूरा किससे बनाया हुआ है, दिव्य सच्चिदानंद से बनाया हुआ है। इसलिए अंदर बाहर भगवान का कुछ फर्क नहीं है, लेकिन हमारे में, हमारे आत्मा में फर्क है। हम जिस तरह ये गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, इस तरह आत्मा शरीर के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन भगवान के शरीर के अंदर क्या कुछ आत्मा है, नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर और उनके आत्मा में फर्क नहीं है। भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा एक ही चीज़ है, क्योंकि भगवान अपने स्वयं के रूप के साथ आते हैं। वो खुद भगवान बताते हैं भगवद गीता में, हाँ, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम यात्ममायया। स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपने स्वेच्छा से आता हूँ और आत्मा माया के साथ आता हूँ, उसका मतलब अंतरंग शक्ति के साथ आता हूँ, मैं मेरे शरीर के साथ ही आता हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है समझना। अभी मैंने जो आपको बताया कथा, मार्कंड ऋषि की कथा बताई मैंने, उसमें भगवान ने मार्कंडे को दिखाया कि मेरे ही शरीर के अंदर सारे ब्रह्मांड है। इसी चीज़ को भगवान ने यशोदा मई को भी दिखाया है ना। आप वृंदावन में जाएंगे ब्रह्मांड घाट, उधर ये लीला हुई आपको मालूम है, जब सब गोपगण खेल रहे थे भगवान के साथ, तभी बलराम और बलराम को दूसरे गोपों ने बताया कि ये कृष्ण ने मिट्टी खा लिया है, मुख के अंदर मिट्टी डाला है। तो तुरंत कंप्लेन कर दिया सब लोगों ने यशोदा मई के पास जाकर, है ना। तो यशोदा मई ने उनको पूछा, क्या तुमने मिट्टी खाया है कि नहीं, है ना, क्या बोला उन्होंने, उन्हें बोला मैं नहीं खाया। तो यशोदा मई ने पूछा, तुम मुख को खोल कर दिखाओ। जब भगवान ने मुख खोल कर दिखाया, मुख के अंदर क्या देखा यशोदा मई ने, सारे ब्रह्मांड को देखा उन्होंने। और उसको देखकर यशोदा मई को चक्कर आने लगी और उनको समझ में नहीं आई कि ये क्या मेरा बच्चा है, नहीं तो इसके मुख के अंदर सारे ब्रह्मांड है इसके अंदर है। इस तरह देखकर यशोदा मई तुरंत उनके पाँव में गिर गई और नमस्कार करने लगी। तब भगवान ने सोचा कि ये क्या है, मेरी माँ इस तरह दंडवत प्रणाम कर रही है मुझे, हाँ। तो भगवान को इच्छा हुई कि यशोदा मई अपने माँ के वात्सल्य भाव में रहे, इसलिए भगवान ने तुरंत मुख बंद कर लिया उन्होंने। आज तक किसी को मालूम नहीं कि भगवान ने मिट्टी खाया कि नहीं खाया है। किसी को मालूम है भगवान ने खाया कि नहीं खाया, किसी को मालूम है? ऐसे आचार्य गणों के बीच में इतने चर्चा चलता है, एक आचार्य बताते हैं 8 कारण क्यों भगवान ने मिट्टी नहीं गाया है, दूसरे आचार्य ने 8 कारण बताया भगवान ने क्यों मिट्टी गाया है। लेकिन भगवान मिट्टी गाया कि नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम भगवान ने ब्रह्मांड को तो दिखाया अपने मुख के अंदर, जिस तरह उन्होंने मार्कंड ऋषि को दिखाया ब्रह्मांड को अपने पेट के अंदर, इस तरह उन्होंने अपने माँ को भी दिखाया। ऐसे इसे हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो आए 5000 साल के पहले, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति भी नहीं है, ये योगी नहीं है, बड़े राजा नहीं है, महान व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये कौन है, परम भगवान है, ये शास्त्र बताते हैं ऐसे। और अपने सच्चिदानंद स्वरूप के साथ भगवान आते हैं इस दुनिया में। तो इस चीज़ को अनेक लोग समझते नहीं थे। जब भगवान कृष्ण इस दुनिया में आए थे उस समय में भी, ऐसा मत सोचिए कि जब भगवान कृष्ण आए थे तभी सारे दुनिया में सब लोगों ने माना कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। उस समय भी ऐसे लोग थे जो भगवान को आंखों से देखा भी, फिर भी उन्होंने माना नहीं कि ये परम भगवान है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर भगवान एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं तुरंत मान लूँगा, सब छोड़ दूंगा, भगवान का आश्रय ले लूँगा, मैं सब छोड़कर मैं वृंदावन चले जाऊँगा और मैं साधु बाबा बन जाऊंगा, अगर भगवान एक बार दर्शन दे मुझे। इस तरह लोग, अनेक लोग बोलते हैं, क्या एक बार दर्शन मिल सकता है भगवान की? तो उन लोगों को ये बताना चाहिए कि अनेक लोगों ने भगवान को आंखों से देखा, देखने के बाद भी वो शरण नहीं लिया। इस तरह अगर आपके सामने भगवान आ जाए एक क्षण के लिए, शायद आप भगवान को बोलेंगे बहुत धन्यवाद, आप चले जाइए, हमारे पूरे कर्तव्यों को हम पूरा करने के बाद वापस आएंगे, बाद में जब हम बूढ़े हो जाएंगे तभी हम जप करेंगे और हम आपके धाम में आएंगे तभी, अभी नहीं। क्योंकि ये तो भगवान अपने सुंदर विग्रह के रूप में खड़े हैं राधा कुंज बिहारी जी मंदिर में, हम देखते हैं, अगर हमें दिव्य आंखें हैं हम समझ सकते हैं कि ये भगवान के श्री विग्रह जो है ये भगवान से अभिन्न है। ये श्री विग्रह अपने कारुण्य कटाक्ष के द्वारा भक्तों को कृपा प्राप्त कृपा दिला दे सकते हैं भगवान, और भक्तों के हृदय को छू सकते हैं, भक्तों के साथ बोल सकते हैं, भक्तों के हृदय में भक्ति भावना को जागृत कर सकते हैं भगवान। तो भगवान के समय में ये घटना हुई जो हम बताना चाहेंगे। जब भगवान शांति दूत के रूप में गए, पांडवों ने विनती की थी भगवान को, युधिष्ठिर महाराज ने बोला कृष्ण को, हे कृष्ण हमारा तो जंगल में वनवास तो हो गया, लेकिन वापिस आने के बाद मैं देखता हूँ कि जन साधारण सब बहुत खुश दिखते हैं, सब लोग लोगों के पास धन दौलत है, सब लोग बहुत खुश में है लगता है। तो शायद दुर्योधन राजा होने से लोगों को शायद बहुत सुख प्राप्त हो सकता है लगता है मुझे, क्योंकि मैं तो राज्य चाहता था ताकि लोगों को हम भलाई करें, लेकिन अगर लोग ऑलरेडी खुश हैं पहले से तो मुझे राजा बनने की क्या ज़रूरत है, दुर्योधन को छोड़ दीजिए वो ही राजा बने, ऐसे बोला किसने, युधिष्ठिर महाराज ने। इसका कारण क्या है, जब पांडव लोग वापस आने वाले थे जंगल से, उसके एक साल पहले से दुर्योधन लोगों को इतना सुविधा प्रदान करने लगा, जैसे कभी कभी पॉलिटिशियन लोग करते हैं, राजनीतिक लोग क्या करते हैं, आपको बुलाते हैं कि आप हमारे साथ आइए, आपके लिए हम लारी लाए हैं, आपके लिए गाड़ी आए हैं, बैठिए गाड़ी में, आप वोट देने के लिए आइए, आपको जूस देते हैं, अलग अलग चीज़ देते हैं आपको, जब वोट मिल गया तो आपको भूल जाते हैं उसके बाद, क्योंकि उसके बाद बहुत व्यस्त हो जाते हैं अपने पॉकेट भरने में ना अनेक लोग। तो ये दुर्योधन ने भी क्या सोचा था कि मैं लोगों को ऐसे में उनके इंद्रियों को इंद्रियों को मैं इंद्रदत्ति प्रदान करूंगा लोगों को, उससे लोग क्या सोचेंगे, हमें पांडव नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, दुर्योधन चाहिए, ऐसे लोग सोचना चाहिए। इस तरह सोचकर दुर्योधन ने उनको सब दी थी ऐसे, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा सब लोग खुश दिख रहे हैं ऐसे, लेकिन भगवान ने बोला तुम ऐसे मत सोचो, सब लोगों की इच्छा है कि पांडव ही राजा बनना चाहिए। फिर भी युधिष्ठिर ने बोला भगवान को, देखिए भगवान हम तो क्षत्रिय हैं, मुझे बहुत कुछ जमीन की इच्छा नहीं है, आप बोलिए दुर्योधन को जाकर हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, अगर तुम सारी चीज़ दुनिया वापस नहीं देना चाहते हो कम से कम आप 5 गांव दे दो बस, हम उसकी शासन करेंगे, हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के धर्म को करना चाहिए, हमको 5 विलेज गांव दे दो और सारी दुनिया को तुम ले लो। लेकिन दुर्योधन की मन में क्या चल रहा था, उसकी इच्छा थी कि पांडव लोग जीना ही नहीं चाहिए, उन लोगों को मर जाना चाहिए। तो पहले से दुर्योधन ने लक्षाग्रह में वारणावट में उनको जलाने के लिए प्रयत्न की, भीम को विष दिलाया था पहले से, अलग अलग तरीके से दुर्योधन ने उनको मारने के लिए प्रयत्न की, लेकिन पांडव को कोई मार नहीं सकते क्योंकि भगवान उनको रक्षा करते हैं। अभी भी दुर्योधन ने अपने पिताजी को बोला धृतराष्ट्र को, इस युद्ध को कोई रोक नहीं सकता, हम 100 लोग हैं, वो 5 पांडव हैं, हम उनको मार डालेंगे युद्ध भूमि में, उसके बाद मैं सारी दुनिया का राजा बन जाऊंगा, और कभी भी ये वैरी दुश्मन पांडव इस दुनिया में जीना भी नहीं चाहिए। लेकिन पांडव शांति चाहते थे, तब भगवान कृष्ण को भेजा उन्होंने शांति दूत के रूप में, तो जब भगवान आए थे हस्तिनापुर में, धृतराष्ट्र को भी इच्छा थी कि युद्ध होना चाहिए और पांडव लोग मर जाना चाहिए, उनको भी इच्छा थी ऐसे ही, क्योंकि पिता और बेटा दोनों लोग चालाकी थे ऐसे। तो भगवान को बहुत अच्छी तरह स्वागत किया उन्होंने, सभा में बुलाया, तो उसके बाद दुर्योधन सभा के बीच में उठकर चला गया, बीच में से उसको वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसको मालूम हो गया कि अभी कृष्ण जो सबको बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति से हम सेटल करेंगे, पांडवों को आप इतना तक दीजिए बस, तो सब लोग मान रहे थे, विदुर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र भी, लेकिन दुर्योधन मना कर रहा था। इतना तक कि दुशासन ने भी सोचा कि ये शांति अच्छा है सबके लिए, तो उसको देखकर दुर्योधन को बहुत क्रोध आ गया हृदय में, तो दुशासन को पकड़कर कर्ण को लेकर बाहर गया दुर्योधन। अब आप लोग, उनको बहुत डांटा उसने, अरे मूर्खो, ये कृष्ण के शब्दों से तुम्हारा भी दिमाग बदल गया। उन्होंने बोला कि ज़रूर हमें युद्ध होना ही चाहिए, और उसने एक आइडिया बताया कि हम इस कृष्ण को हम एक तरीके से हम पकड़ लेंगे आज, गिरफ्तार करेंगे कृष्ण को, ताकि अगर इसको गिरफ्तार कर लिया हमने कभी भी पांडव लोग युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक ही सपोर्ट है भगवान कृष्ण, तो इसको हम गिरफ्तार करेंगे। जब कर्ण ने सुना, कर्ण ने बोला कि ये तुम क्या सोच रहे हो कृष्ण के बारे में, मैंने तो देखा है कि जो भी इस दुनिया में करना होता है कृष्ण तो आसानी से करते हैं ये सब चीज़, और अभी तक मैंने इस दुनिया में कोई इनसे ज़्यादा बुद्धिमान देखा नहीं है सब कार्यों में। इतना तक कि शास्त्र भी बताते हैं कि ये परम सत्य जो है, ये पुरुषोत्तम जो है वो कृष्ण ही है जो हमारे बीच में घूम रहे हैं। मुझे पहले से शंका है कि शायद ये भगवान हो सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है, फिर भी ये श्रेष्ठ है, अच्छा है कि तुम ऐसे व्यक्ति के साथ तुम कुछ खेल मत करना है। ऐसे कर्ण ने भी उसको उपदेश दी, दुर्योधन सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला कि तुम ये सब छोड़ दो, भूल जाओ, तुम तो मेरे मित्र हो, मैं जो बोलूँगा उसको मानना चाहिए तुमको। तो कर्ण ने सोचा कि मित्रता के कारण सोचा उसने, ठीक है जो भी तुम्हें करना करो। तो दुर्योधन ने ऐसे आयोजन की थी, सैकड़ों सैकड़ों सैनिकों को आयोजन किया था उन्होंने, सब द्वारों में उनको खड़ा किया था बाहर दुर्योधन ने। उनका आइडिया ऐसा था कि जब वो ऐसे ताली बजाएंगे तभी सब सैनिक चारों दिशा में अलग अलग आयुधों के साथ आएंगे और भगवान कृष्ण को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, उनको पकड़ कर रखेंगे, ये उनका आइडिया था ऐसे। तो जब सात्यकी को पता चला तो तुरंत सात्यकी भगवान कृष्ण को बोले उनके कानों में, कृष्ण आपको मालूम है क्या चालाकी चल रहा है इधर? उन्होंने बोला कि ये दुर्योधन अपने मित्रों के साथ आपको गिरफ्तार करना चाहता है, वो सब लोग आपको पकड़ना चाहते हैं। इस तरह भगवान के कानों में बोला सात्यकी ने। भगवान हंस पड़े, उन्होंने बोला कि इस दुनिया के सब राजा लोग साथ में भी आए, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, तुम चिंता मत करो, ऐसे बोला उन्होंने। और इतने में विदुर को पता चल गया और विदुर बहुत जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने बोला धृतराष्ट्र को, देखो तुम्हारे बेटा क्या करना जा रहा है आज, कितना बड़ा बेवकूफ है, भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण बचपन में इतने राक्षसों को उन्होंने मारा है, अरिष्टासुर, दैनकासुर, पूतना, उनके मामा कंस, कितने लोगों को उन्होंने मारा है बहुत आसानी से, और वो परम भगवान है, उनको किसी भी चीज़ करने के लिए कुछ तकलीफ नहीं होता, उनको कोई पकड़ नहीं सकते हैं। इस तरह अगर ये आपका बेटा दुर्योधन ये करना चाहेगा, ये किसके समान है? जिस तरह एक जो कीड़ा होता है वो आग के अंदर चला जाता है और जल कर राख बन जाता है, इस तरह तुम्हारा बेटा भगवान के साथ लड़कर वो मर जाएगा, वो बड़ा बेवकूफ है। भगवान किसके समान है? एक बड़ा सिंह जो है, सिंह कभी कभी एक बकरियों के बीच में अगर आता है तो सारे बकरियों को मार देता हो, है ना? इस तरह भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, उनके साथ इस तरह मूर्खता से तुम्हारा बेटा खेलना चाहता है, ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, तुम उसको उपदेश दो, ऐसे बोला उन्होंने विदुर ने। तो धृतराष्ट्र ने बुलवाया दुर्योधन को सभा में, बुलाओ मेरे बेटे को, इतना उन्होंने डांटा उसको, इतना डांटा धृतराष्ट्र ने। लेकिन इसका समस्या क्या है, धृतराष्ट्र बहुत आसक्त था अपने बेटे के ऊपर, इसलिए जितना भी चिल्लाओ वो अंत में अपने बेटे को भी सुनता था हमेशा, वो उसका समस्या था वो। तो भगवान भी थे उधर ही, भगवान के सामने धृतराष्ट्र चिल्ला रहा किसके ऊपर, दुर्योधन के ऊपर, तुम क्या भगवान को पकड़ने के लिए जा रहे हो, तुम मूर्ख हो, भगवान इधर ही बैठे हैं, तुम इस तरह चीज़ों को बंद करो ऐसे। तो दुर्योधन ने सोचा कि अभी तो बहुत समय चला चल गया, सब लोगों को पता भी चल गया अभी, उसने सोचा कि अभी तुरंत कुछ प्रायोगिक रूप से करना चाहिए। तुरंत उसने ताली बजाया, पकड़ो पकड़ो ऐसे चिल्लाया, चारों दिशाओं में से सैकड़ों सैकड़ों सैनिक आने लगे, बहुत घोर आयुधों को हाथ में लेकर भगवान की ओर गिरफ्तार करने के लिए ऐसे भाग कर आ रहे थे। और भगवान ऐसे जोर से हंसे, भगवान कृष्ण, और उनके शरीर से ऐसे कांति रोशन निकला मानो हजारों सूर्य एक समान प्रकाशित हो जाए आसमान में ऐसे। और भगवान ने बोला दुर्योधन को, हे दुर्योधन, तुम कितना बड़ा मूर्ख हो, तुम सोच रहे हो कि मैं अकेला बैठा हूँ सामने सभा में तुम्हारे सामने, लेकिन मैं अकेला कभी नहीं हूँ, मेरे साथ साथ कौन है तुम देखो। तुरंत उन्होंने देखा कि भगवान के सर से ब्रह्मा जी निकले, और भगवान की छाती से शिव जी निकले, और भगवान के हाथों में लोकपालक जन्म लेकर उनके हाथ में बैठे, और भगवान के आमने सामने इतने देवी देवता और ऋषि मुनि ब्राह्मण सब उनके शरीर से निकलने लगे, और सब भगवान की गुणगान करने लगे वैदिक मंत्रों के द्वारा। और भगवान के दोनों आंखों से, एक आंखों से बलराम, दूसरे आंखों से अर्जुन, दोनों आए दोनों साइड में, बलराम और अर्जुन आकर दोनों साइड में खड़े हो गए ऐसे। और इस तरह देखा, धीरे 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 भगवान के शरीर से कितने लोग आ रहे हैं, राक्षस और गंधर्व, यक्ष, अंधक, ऐसे अनेक तरह के लोग आने लगे भगवान के शरीर से। और भगवान ने ऐसे ही विश्व प्रकट किया, भगवान का शरीर इतना आसमान तक बढ़ने लगा, और शंख चक्र गदा पद्म के साथ भगवान ने दर्शन दिए। और बाहर समुद्र में इतने बड़े लहरें उठने लगे, बहुत बड़ा तूफान आने लगा, और आसमान में जैसे थंडर, बिजली बिजली चमक रहा था आसमान में ऐसे। तो इसको लोग देख भी नहीं पा रहे थे, जो लोग देख रहे थे सभा में सब लोगों का आंख बंद करने लगे, इतना रोशनी आने लगा ऐसे भगवान के शरीर से। और कुछ लोग देख पाए, जैसे भीष्म पितामह, द्रोण, विदुर, और धृतराष्ट्र, तभी चिल्लाया भगवान को, हे भगवान कृष्ण, आप सब दुनिया के शुभ चिंतक हो, आप जो भी सोचते हो सबके लिए, वो सबके लिए भलाई करने वाला चीज़ है। और मुझे तो आपने अंधा बनाया है, लेकिन मुझे बहुत इच्छा है, बहुत समय से आपकी आवाज़ तो सुना हूँ मैंने, लेकिन आपको देखने की इच्छा है मुझे बहुत, आप कृपया मुझे आंख प्रदान करो ये सुंदर रूप को देखने के लिए। तुरंत भगवान ने उनको बोला, ले लो, मैं तुमको आंख देता हूँ अभी मेरा दर्शन करने के लिए। तो तुरंत धृतराष्ट्र को आंख मिल गया। तो उस समय तक संजय बता रहा था उनको क्या क्या चल रहा है, अभी धृतराष्ट्र खुद आंखों से देखा भगवान के स्वरूप को देखा इस तरह। और सब लोग नीचे गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगे और प्रार्थनाएं देने लगे भगवान को इस तरह। और इसके बाद भगवान वापस अपने श्याम सुंदर के रूप में आ गए, भगवान सब शांत हो गया उसके बाद। लेकिन सभा के सब लोग खड़े थे, तो भगवान ने बोला सात्यकी को, चलो अभी हम वापस चलते हैं। तो जब भगवान मुड़कर वापस गए, सब कुरु के नेता हैं, जैसे धृतराष्ट्र और विदुर और द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सब लोग उनके पीछे पीछे जाने लगे। सब लोग उनके पीछे गए, लेकिन बैठे थे कुर्सी में कौन, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी, वो सब लोग बैठे ही रहे ऐसे ही स्तब्ध रह गए। फिर भी दुर्योधन ने सोचा कि शायद ये कृष्ण जो दिखा रहा है, ये एक तरह का एक योगिक शक्ति है, ऐसे सोचा उसने दुर्योधन ने। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ ये लीला आपको, क्योंकि भगवान इतने अपने दर्शन देने के बाद भी जो नास्तिक हैं वो नास्तिक ही रहते हैं, बदलने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हम देखते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन के विपरीत बुद्धि के कारण सर्वनाश हो गया कौरवों का पक्ष हम देख सकते हैं। तो इस तरह भगवान कृष्ण जो हैं, उसको भारत के अनेक लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण साधारण व्यक्ति है, नहीं तो एक राजा थे, नहीं तो 5-6 हज़ार साल के पहले आकर गए, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण का शाश्वत रूप है, जो हम देखते हैं राधा कुंज बिहारी, यही भगवान का स्वरूप है। और इस स्वरूप के साथ भगवान भगवद्धाम में हमेशा लीला करते हैं। लेकिन बीच में जब इस भौतिक दुनिया में आते हैं, ये कितना बड़ा लाभ है भौतिक दुनिया को जरा देखिए। और भगवान इधर आकर जब लीलाएं करते हैं, कुंती महारानी बोलती है, हे भगवान आपके पांव कहीं भी पड़ता है भूमि में, वो भूमि पवित्र हो जाता है। इसके कारण समुद्र में नवरत्न प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों में फल फूल प्राप्त होते हैं, और भूमि से सोना चांदी सब प्राप्त होते हैं, और गायें सब दूध देते हैं, और प्रकृति सब इतने हरा भरा रहता है, बारिश समय पर होती है। तो ये भगवान आपके आने से सारे प्रकृति बहुत सुंदर बन जाते हैं। जब भगवान मुस्कान देते हैं, हंसते हैं, तभी सारे प्रकृति हंसती है। इसलिए जब प्रकृति बहुत प्रसन्न दिखती है, इसका मतलब भगवान प्रसन्न है। ऐसे तो इस तरह भगवान के स्थिति को जानना, तत्व को जानना बहुत आवश्यक है। जब हम भगवान की असली स्थिति को जानेंगे पहले, उसके बाद जब हम भगवान के बाली लीला सुनेंगे, भगवान ने कैसे माखन चोरी की, भगवान ने कैसे गोपों के साथ खेला, वो सब सुनने के लिए अच्छा है। कब? पहले हम तत्व को जानने के बाद, क्योंकि जब हम भगवान की महत्वता को जानते हैं, उसके बाद उनकी लीलाएँ सुनते हैं, तभी हम आदरपूर्वक सुन सकते हैं। नहीं तो अनेक लीलाओं को लोग सुनते हैं, लेकिन वो हंसते हैं जन्माष्टमी के दिन और चले जाते हैं, और वो ही इंद्रित्व में लगे रहते हैं। लोग टेलीविज़न देखते हैं, सिनेमा जाते हैं, ताश खेलते हैं, और दूसरा कुछ नहीं जीवन में। लेकिन जब हम भगवान के बारे में सही तरह से जानेंगे, तभी हम भगवान का शरण जा सकते हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ जो है, उसके फिलॉसफी का सारांश यह है कि कृष्ण भगवान परम भगवान है, और सब देवी देवताओं का वही स्रोत है, और जीवात्मा कृष्ण भगवान के दास है, और जीवात्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। आजकल लोग इतने अलग अलग लोगों की सेवा करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों की सेवा करते हैं, अपने दादा की, मामा की, नानी की, दादी की, पिताजी की, माता जी की, सबकी सेवा करते हैं। अगर किसी की सेवा नहीं है तो एक कुत्ते खरीद कर लेके आते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं, है ना, इस तरह लोग करते हैं। लेकिन भगवान को सेवा नहीं करते हैं लोग, लेकिन सेवा करने का भावना जो है जीव के अंदर है। प्रभा जी बोलते थे, इफ़ यू डोंट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग, ऐसे बोला अमेरिका में जब गए थे प्रभा जी। प्रभा जी ने देखा कि अमेरिका में सब लोग कुत्ते की सेवा करते हैं, अभी भारत में भी शुरू हो गया वो, सब लोग कुत्ते को एक चेन पकड़ कर लेके जाते हैं घूमने, पता नहीं क्या ये कुत्ते को घूमने के लिए लेके जाते हैं, नहीं तो कुत्ता इनको लेके जाता है घूमने के लिए। लेकिन लोग इतने समय बिताते हैं कुत्ते के साथ, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है लोगों को। तो हम जन्माष्टमी के दिन सिर्फ मंदिर में आकर दर्शन करके चले जाते हैं, और हमारे जीवन में बदलावट नहीं आता है, तो क्या फ़ायदा? तो ये बात हमें जानना चाहिए कि ये भौतिक दुनिया एक जेल खाना है। ये जेल खाना क्यों बनाया गया है? जेल में किसको बेचते हैं? पुणे में अभी एरवाडा जेल में कौन जाते हैं? सज्जन लोग जाते हैं उधर? नहीं, जो लोग किसी ने डकैती की है, चोरी की है, पिक पॉकेटिंग किया है, उसको डालते हैं उधर, है ना। इस तरह भगवत धाम में जो लोग भगवान के विरुद्ध होकर भगवान जैसे बनना चाह लोग, उनको इस भौतिक दुनिया में भेजा जाता है। जो लोग भोग करना चाहते हैं, मैं भोगता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसे उन लोगों को इस भौतिक दुनिया में भेजा जाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि दुनिया कितना बदमाश लोग हैं दुनिया में, आप आश्चर्य मत करिए कि ज़्यादा लोग बदमाशी होंगे इधर, इसलिए उनको इधर भेजा गया है इस दुनिया में। सज्जन लोग कितने होंगे? बहुत कम लोग होंगे इस दुनिया में सज्जन लोग। तो ये जेल खाना है, इसलिए हमें इतना दुख है। हम देखते हैं बुढ़ापा आता है, व्याधि आता है, मृत्यु आता है, हम चाहते नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम पार करके जा सकते हैं भगवान के धाम में, जब हम भगवान का शरण लेते हैं। ये बात हमें मानना चाहिए, जीव कृष्णदास ये विश्वास कोरे ले तो वार दुख का नाय। जीवात्मा भगवान के कृष्ण के दास है, और यही विश्वास, इस बात के ऊपर हम विश्वास रखेंगे और भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, तभी कुछ दुखी नहीं, ऐसे बताते हैं, आनंद ही आनंद है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 साल के पहले आए भारत में, उन्होंने कृष्ण भक्ति इतना सरल तरीके से सिखाया सब लोगों की भलाई के लिए। आजकल लोग क्या क्या तरह के ध्यान करते हैं, कोई कोई आदमी है ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल बनाकर उसको ध्यान करना करने के लिए ट्राई करते हैं। मैं भी ट्राई करता था पहले, इस कान में आने के पहले, तो ऐसे देखते देखते मुझे बहुत सर दर्द हो गया, बहुत चक्कर आने लगा उसको देखकर। कुछ लोग ऐसे ध्यान करते हैं, कुछ लोग तरह तरह के योगासन करते हैं, उनका सोचना होता है तुम योगासन करो तंदुरुस्त हो जाओ ताकि तुम अच्छी तरह इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो। लेकिन योग का ये लक्ष्य नहीं है। योग का मतलब ही भगवान से जुड़ना, उसका मतलब है योग। तो भगवान के साथ जुड़कर उनकी सेवा करना ही योग का लक्ष्य है। लोग आजकल भूल गए हैं। तो धर्म के नाम में अनेक चीज़ चल रहा है दुनिया में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि तुम बच्चे जैसे सरल हृदय के साथ भगवान कृष्ण का तुम आश्रय लो। कैसे? भगवान के दिव्य नामों को पुकारने के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि ये कलयुग में हरि नाम संकीर्तन जो है उससे बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर आपको मैं बोलूँगा अभी आप लोग सब पैकिंग कर लो, हम लोग हिमालय में जाएंगे अभी, कितने लोग आएंगे मेरे साथ? अगर आपको मैं बुलाऊंगा अभी हिमालय में आ जाओ, सब छोड़ छाड़ कर आ जाओ, कितने लोग आ सकते हैं? कोई भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन आपको बोला जाता है कि आप लोग अपने अपने घर में रहो, पत्नी बच्चे आप सब लोग रहो, लेकिन घर में क्या करो, अपने सब क्रियाओं को भगवान के साथ जोड़ो। कुछ छोड़ना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जोड़ो। इस तरह कोई बोलेंगे तो कितने लोग खुशी से भगवान के भक्ति में जुड़ सकते हैं, ये सिखाए चैतन्य महाप्रभु ने। गृहे डाको वने डाको सदाहरी बोले डाको। उन्होंने बोला कि किसी भी आश्रम में हो, तुम ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, लड्डू गोपाल छोटा, तो लड्डू गोपाल को खिलाते हैं, रोज पिलाते हैं, समय समय पर भोग चढ़ाते हैं, और इतना प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हो जाता है, भगवान को पुनर्जागृत हो जाता है। तो ऐसे माताएं भी भगवत नाम वापस लौट जाएंगे बहुत आसानी से। और दूसरे तरीके से लोग जो वेदांत पढ़ते हैं, शंकराचार्य ने इसलिए बोला भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राते सं निहिते काले नहीं नहीं रक्षति तुक्रिं करणे भज गोविंदम। उन्होंने बोला जब शंकराचार्य काशी में गए थे तभी उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो संस्कृत में पंडित था। तो अपने बूढ़े अवस्था में 80 उम्र में वो एक हाथ में दिया लेकर वो शास्त्र को पढ़ रहा था, वो ऐसे देख कर पढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। तो उसको देखकर शंकराचार्य ने बोला उसको, अरे मूढ़, तुम इतने संस्कृत को पढ़कर अलग अलग शब्दों को लेकर शब्दार्थ करके तरह तरह का शब्द निकालने के लिए तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन इस तरह के यत्न से तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तुमको लाभ नहीं है। इसके बदले अच्छा है कि तुम क्या करो, भगवान कृष्ण की नाम लो, भज गोविंदम, उनकी पूजा करो, तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने प्रायोगिक तरीके से इस नाम को वितरण करके दिखाया। उन्होंने वो खुद बाहर आते थे अपने भक्तों के साथ, गली गली में जाते थे, अपने असिस्टेंट्स को भेजते थे, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को भेजते थे, जाओ ऐसे सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमार आज्ञा करो हो प्रकाश प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। उन्होंने बोला कितना सरल है देखिए, उन्होंने बोला सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, ए नित्यानंद और हरिदास आओ, मैं जो तुमको बोलने वाला हूँ संदेश उसको ध्यान से सुनो। सर्वत्र अमर आज्ञा करो हो प्रकाश, मेरे आज्ञा को तुम क्या करो, प्रकाशित करो सब जगह में। तो मैं तुमको आदेश देता हूँ, क्या आदेश है, बहुत सरल आदेश है, प्रति घरे घरे गया करो यही भिक्षा, जाओ तुम हर घर घर में जाकर तुम क्या करो, दरवाजों को टोको, तो लोग खोलेंगे, उनसे क्या मांगो, बोलो कृष्णा, ऐसे बोलते हैं, सिर्फ कृष्ण का नाम लो, भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, पूजा करो, और करो ये शिक्षा। ये कृष्ण की शिक्षा जो है कृष्ण उपदेश भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में, वेदों में, पुराण में, ये शिक्षा को तुम स्वीकारो और दूसरों को भी प्रदान करो। इस तरह तुम उसे याचना करो। हम दूसरा कुछ याचना नहीं करते हैं। अभी प्रभुपाद जी बताते हैं हमारे इस्कान में भी आप लोगों से हमें कुछ भी लेना नहीं है। क्या लेना है? आपसे यही याचना है कि ये तीन चीज आप करिए। बोलो कृष्ण का मतलब है कृष्ण का नाम लीजिए। भजो कृष्ण का मतलब कृष्ण का भजन करिए अपने घर में। कैसे? आप जो भी कहते हैं भगवान को भोग चढ़ाइए और भगवान की पूजा करिए, भगवान की कीर्तन करिए, भगवान के शास्त्र को पढ़िए और उन शास्त्रों के अनुसार जीवन बिताइए और पाप कर्म में मत लगाइए अपने को, अपने परिवार के दूसरे लोगों को। शुद्ध जीवन बिताइए और कृष्ण की शुद्ध भक्ति में जुड़ जाइए। यही विनती किया चैत्र महाप्रभु ने अपने पार्षदों के द्वारा नाम के प्रचार करते हुए। ऐसे तो वो लोग गली गली में जाकर ऐसे प्रचार करते थे सारे भारत में। और चैत्र महाप्रभु उस समय एक प्रेडिक्शन किया था, उन्होंने बताया था कि भविष्यवाणी की थी उन्होंने कि भविष्य में मेरा एक सेनापति भक्त आएगा। वो सेनापति भक्त क्या करेगा? मैंने जो भी इनाम संकीर्तन का वितरण किया मैंने उसको वो सारे दुनिया में फैलाएगा, वो भारत में ही नहीं लेकिन सारे दुनिया में ऐसे। और पिछले सेंचुरी में 1896 इस समय भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती के पिताजी थे, उन्होंने ये किताब लिखी थी टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। उसमें उन्होंने बताया था कि ये चैतन्य महाप्रभु ने जो सेनापति भक्त के बारे में बोला वो बहुत जल्दी ही जल्द उनका जन्म होने वाला है। ऐसे लिखा था 1896 में। उसी साल हमारे इस्कान के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, उसी साल 1896। और प्रभुपाद जी के जीवन से हम देख सकते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला सेनापति भक्ति के बारे में वो कौन है? वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो इन्होंने पाश्चात्य देशों में जाकर भगवद्गीता का और भागवत का प्रचार किया और इनके नाम में हम बोलते हैं निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। इन्होंने निर्विशेषवाद जो निराकारवाद और शून्यवाद जो बौद्धवाद, इसके विरुद्ध प्रचार करके अमेरिका जैसे प्रदेश में और सारे दुनिया के प्रदेशों में क्या किया, इन्होंने स्थापन किया भगवान के श्री विग्रह का। जैसे इधर राधा कुंज बिहारी आप देखते हैं, अब लंदन में जाइए राधा लंदन ईश्वर हैं, उधर पेरिस में जाइए राधा पेरिस ईश्वर हैं, उधर तो लॉस एंजलिस में जाइए, सैन फ्रांसिस्को में जाइए, न्यूयॉर्क में जाइए, कहीं भी जाइए सारे दुनिया में आप भगवान राधा कृष्ण की गौर नीता की आप विग्रह देखेंगे, मंदिर देखेंगे, आपको प्राप्त होगा। और इस्कान के मंदिर में आपको खाने को राइस दाल सब्जी चपाती मिलेगा आपको, कहीं भी जाइए प्रसाद मिलेगा आपको उधर भी। तो इतने विदेशी लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया है, नशापान करना छोड़ दिया है, अवैध स्त्री संघ छोड़ा है, इस तरह सब गलत चीज़ों को छोड़कर वो लोग शुद्ध कृष्ण भक्ति के जीवन में लग गए हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो। तो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ये शरीर का। अगर आपको ये कार दिया जाता है, गाड़ी, गाड़ी का क्या लक्ष्य होता है? अगर आपके पास कार है, कार तो हम क्यों खरीदते हैं? ऑफिस जाने के लिए खरीदते हैं, है ना? कार को अलंकार करने के लिए कार कोई नहीं खरीदता, कोई खरीदता है? अगर कोई कार गाड़ी खरीदता है और उसको बार बार वो सफाई करता है और अलग अलग तरह के हार पहनाता है और पेंटिंग करता रहता है, यूज़ नहीं करता है। इस तरह आजकल लोग शरीर को सजाते हैं हमेशा, इतने तरह के शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ आते हैं मार्केट में, इतने तरह के हेयर स्टाइल होते हैं, 26 तरह के हेयर स्टाइल हैं, इतने तरह के सेंट्स होते हैं, पाउडर होते हैं, कोट होता है, शूटिंग होता है, इतने नेल पॉलिश आते हैं, सब आता है। शरीर के लिए आदमी सब कुछ करता है लेकिन आत्मा के लिए कुछ करता नहीं। तो शरीर के लिए सुख, मन के लिए शांति और आत्मा के लिए आनंद चाहिए तो व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में लगना चाहिए। हम देखेंगे ये सारे दिशाओं से देखा जाए तो शरीर से, मन से और आत्मा से पूर्ण तरीके से हमें योग जो है इसको सारे दुनिया में उन्होंने फैलाया बहुत वैज्ञानिक तरीके से। उनकी किताबों का आप पढ़िए, आप जानेंगे कि प्रभुपाद जी किताब कितने सरल हैं समझने के लिए, उसमें कुछ कुटी नाटी नहीं है, उसमें कुछ कोई भी प्रभुपाद जी बोलते थे तुरंत वो शास्त्र से कोट करते थे। अपने शिष्यों को भी उन्होंने बोला कि लॉयर जो होता है, लॉयर के पास हमेशा इंडियन पिनल कोड होना चाहिए, जो भी वो बोलता है वो आईपीसी कोड कोड करना चाहिए। ऐसे ही प्रभा ने बोला कि भक्तों को क्या करना चाहिए, जो भी तुम बोलते हो तुरंत एक श्लोक शास्त्र से बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रचार किधर से होता है, शास्त्र के आधार पर परंपरा में होता है। हम अपने मनमाने चीज़ बताते हैं लोगों को। हाँ, आजकल इतने संस्थाएं आ चुके हैं भारत में, सब लोग अपने अपने दिमाग से नया नया धर्म को निकाल रहा है, लेकिन हमको, हम इस्कॉन में जो भी करते हैं वो सब शास्त्र में है। जैसे हम तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करने से कृष्ण भक्ति का वर्धन होता है हृदय में, ये तो अनादिकाल से हो रहा है भारत में। और विग्रह की पूजा हम करते हैं, इसको सत्ययुग में अम्बरीश महाराज ने किया था विग्रह की पूजा। तो इस तरह इस्कॉन की जो फिलॉसफी है कृष्ण की भक्ति, हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि एक साधारण मनुष्य को हम भगवान बना दिया। आजकल इतने साधारण मनुष्यों को पकड़कर लोग भगवान बना देते हैं, बोलते हैं कि ये भगवान ये हैं तो इनका आश्रय लेना चाहिए। पता नहीं लोग, भारत के लोग इतने आश्चर्य होता है कि इतने लोग ऐसे छोटे मोटे मनुष्यों के पीछे पड़े हैं भगवान भगवान करके। साधारण मनुष्य को भगवान मानना और भगवान को साधारण मनुष्य मानना, दोनों बड़ा अपराध है। लोग दोनों करते हैं, कृष्ण को मानते हैं कि साधारण मनुष्य है और साधारण मनुष्य को पकड़ कर बोलते हैं कि भगवान है, तो ये दोनों गलत है। इसलिए पहला चीज़ हमें जानना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। इसलिए आज के प्रवचन में हमने दो तीन लीला बताई आपको, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कृष्ण परम भगवान है और परम सत्य है और पूर्ण पुरुषोत्तम है और सबके आश्रय हैं। इस जानकारी के साथ अगर हम कृष्ण बुक पढ़ेंगे, आज के दिन ये बहुत शुभ दिन है, ये कृष्णा बुक ये किताब है, यह किताब है कृष्णा बुक, हम दिखा सकते हैं। तो यह किताब जो है इसको प्रभुपाद जी ने लिखा भागवत कंप्लीट करने के पहले, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरा उम्र तो बढ़ गया, शायद मैं भागवत को पूरा नहीं कर पाऊँगा, इसके पहले अच्छा कि मैं ये कृष्णा बुक लिख दूँ, जिसमें सारे भागवत का सारांश रहेगा और कृष्ण के जीवन चरित्र रहेगा। तो प्रभुपाद ने कृष्ण की किताब लिखी थी, तो ये इतने मधुर किताब है पढ़ने के लिए। अगर आप कृष्ण की सखी पोषण आप जानना चाहते हैं तो ये किताब पढ़ना चाहिए, और शास्त्रों के आधार पर समझाते हैं प्रभुपाद जी उसमें। तो हम आपसे विनती करेंगे कि आप में से अगर कोई अभी तक नाम लेना शुरू नहीं किया है तो आज से आप शुरू कर सकते हैं, ये जन्माष्टमी के दिन से, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ऐसा दिन है हम भगवान को अपने हृदय में स्वागत कर सकते हैं। ये दिन में भगवान आकर सदा, जैसे पांडवों के बारे में बताया गया है, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, ऐसे बताया गया है कि जो पांडव जिनके पक्ष में भगवान जनार्दन नहीं तो कृष्ण थे, भगवान कृष्ण थे, उनको विजय प्राप्त हुआ है ना। तो इस तरह भगवद गीता के अंत में बताते हैं संजय, अंत में बताते हैं विश्वास आघात करता है और झूठ बोलता है उसके लिए क्या मैं बोलूंगा आपको जवाब दर्शन के बाद बोलता है। तो ये भी श्लोक आप सब लोग दोहरा सकते हैं, बोलिए, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। इस तरह संजय ने बोला भगवद गीता के अंत में, जिधर भगवान कृष्ण हैं सारे योगियों का, योग शक्तियों का स्रोत हैं, और जिधर अर्जुन हैं जो भगवान के महान भक्त हैं और अपने धनुर्विद्या में उच्च कोटि के योद्धा है, ऐसे अर्जुन उस जगह हमेशा विजय प्राप्त होगा, ऐसे बताते हैं। इसका मतलब क्या है, जो लोग अर्जुन के अनुयायी बनते हैं उन लोगों को विजय प्राप्त होगा अपने जीवन में। जैसे अर्जुन भगवान के महान भक्त थे, इसलिए भगवान ने उनको चुना भगवद गीता देने के लिए। तो इस तरह हम भी अर्जुन जैसे भक्त बनेंगे और भगवान के शब्दों को सुनेंगे और भगवान को मानेंगे जैसे अर्जुन ने माना अपने जीवन में, हमें भी ऐसे ऐसे हमें जैसे अर्जुन को भगवान की सहवास की प्राप्त हुई, इस तरह हमें भी भगवान की सान्निध्यता की प्राप्त होगी भगवत धाम में, भगवान के निकट पार्षद बनकर हम सेवा कर पाएंगे भगवान को। और इसको प्राप्त करने के लिए हमें जैसे मैंने बोला भगवान के नाम लेना ज़रूरत है। भगवान के नाम बुलाने से भगवान सुनते हैं और आप भगवान के निकट आ सकते हो। हम तीन बार हम हरे कृष्णा बोलेंगे, सब लोग साथ में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, तो ये दिव्य नाम का उच्चारण करिए कम से कम 108 बार दिन में। उसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट लगेगा, बस 10-12 मिनट लगता है। आप में से कितने लोग अभी तक भगवान का नाम लेना शुरू नहीं किया है, हाथ ऊपर करिए। अभी तक आपने नाम भगवान का नाम लेना शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग आज माला ले लीजिए, आज से शुरू कर दीजिए, एक माला करिए आज से। आज बहुत शुभ दिन है, भगवान की असीम कृपा से आप मध्य में आए हैं। आपने भगवान के बारे में दिव्य कथाएं सुनी, आज प्रवचन सुना है, भगवान का दर्शन करिए और माला लीजिए और भक्तों को मिलिए, भक्तों से प्रश्न पूछिए और आप लगातार आते रहिए ऐसे मंदिर में, और भक्ति में आप बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत धाम वापस लौटना और भगवान की सेवा में लगना, वही लक्ष्य है, इसलिए शरीर दिया गया है। और दूसरे जो हम धंधा करते हैं, काम करते हैं, हमारे घर की जब करना होता है वो भी कर्तव्य है, पूरा करना चाहिए हमें, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम जीवात्मा हैं, शरीर से हम भिन्न हैं, अलग हैं। हमारा रिश्ता है परम पिता भगवान श्री कृष्ण के साथ है, इसको हमें जानना चाहिए। सब लोग पूछते हैं, जैसे इन्होंने पूछा प्रश्न इसमें कि इस दुनिया में इतना गलत चीज़ें चल रहा है जो अच्छे लोगों को तंग करता है दूसरा आदमी, तो इन लोगों को किस तरह की सजा दिया जाए। आप चिंता मत करिए, सजा देने के लिए यमराज हैं, वो ज़रूर दे देंगे सजा उनको। ये बोलते हैं कि विश्वासघातक झूठ बोलते हैं लोग, लोगों के विश्वास को तोड़ते हैं। एक्चुअली देखिए, हर एक जीवात्मा जो है उसके साथ अंतर्यामी के रूप में भगवान बैठे हैं, और भगवान ज़रूर हर एक व्यक्ति को मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपके विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता जब तक आप भगवान के भक्तों का संग में रहते हो हमेशा। जैसे आज देखिए जन्माष्टमी के लिए कितने लोग आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, हज़ारों हज़ारों लोग आए हैं, आप देखते हैं भक्ति की भावना बढ़ रही है, लेकिन अनेक लोगों को शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं है। इसलिए ये भगवद गीता और ये कृष्णा बुक जो मैंने बोला प्रभा जी ने लिखा है, ये कृष्णा बुक ये मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, सब भाषाओं में मौजूद है। आप लोग लीजिए, मंदिर में आए हैं कृपया ऐसे एक दो किताब ले लीजिए साथ में, घर में जाकर पढ़िए। आज तो मैं जो बोला ये तो एक छोटा बूंद के समान है, शास्त्र तो समुद्र के समान है। तो मैं विनती करता हूँ आप लोगों को कि किताब खरीद लीजिए, उसको पढ़िए। अगर मेरा प्रवचन आपको समझ में आया, आज मैंने जो भी बताया आज आपको, तो मैं जो भी बताया ये सब प्रभा जी किताबों में से हमने बताया है। प्रभा जी किताब इतने सरल हैं कोई बच्चा भी समझ सकता है इसको, ऐसे प्रभा जी लिखते हैं। तो आप लोग कृपया ग्रंथ पढ़िए, माला ले लीजिए, जप करिए, कम से कम एक माला करिए आप लोग। अभी हम कीर्तन करने वाले हैं, यही हरिनाम संकीर्तन का, हम विनती करेंगे कि सब लोग इसमें भाग लें। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि हम आप मंदिर में देखते हैं ऐसे हाथ ऊपर किया हुआ, दो विग्रहों को देखा होगा आपने गौर निताई की, क्यों ऐसे हाथ ऊपर करते हैं? ये हाथ ऊपर करने का मतलब है शरणागति, हे भगवान हम आपके शरण जा रहे हैं, आप हमें आपका पद कमलों का आश्रय दीजिए, ऐसे। तो जब हम गाते हैं आप दोनों हाथ ऐसे करिए और ध्यान पूर्वक आंख बंद करके सुनिए, और जब हम रुकते हैं तभी आप दोनों हाथ ऊपर करके आप गाएंगे ऐसे।